येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्णचैतन्या प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। साहब, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभात जागृति में सम्मिलित होने के लिए। मेरे लिए आज ये इमरजेंसी क्लास है, आप देख ही रहे हो। अचानक हमारे वक्ता आज उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये सेवा हमें मिली है। तो आज हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय से छठवां श्लोक पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास भागवत है तो आप भी अपने हाथ में उसको ले सकते हो। मेरे पास में अंग्रेजी भागवत है तो मैं उसको यथाशक्ति हिंदी में उसका अनुवाद पढ़ूंगा। सवयं पुंसां परो धर्मो यथोर्भक्तिरधोक्षजे अहैतुकीय प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकीय प्रहित अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। अनुवाद इसका मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ूंगा। The supreme occupation dharma for all humanity is that by which men can attain to loving devotional service unto the transcendental Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the soul. इसका अर्थ इस प्रकार से है, पूरे मानव जाति के लिए सर्वोच्च धर्म है कि वो प्रेममयी भक्तिपूर्ण सेवा भगवान के लिए प्रदान करें, और ऐसी प्रेममयी भक्तिपूर्ण सेवा किसी भी हेतु के बिना होनी चाहिए और उसमें कोई खंड नहीं होना चाहिए, यानी अहैतुकी होनी चाहिए और अखंड होना चाहिए। उससे क्या होगा, ऐसी अहैतुकी और अखंड सेवा करने से आत्मा को पूरी तरह संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी, यानी कि यह आत्मा सुप्रसीदति। तो यहां पर उसका तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया है। सूत गोस्वामी यहां पर अपने नैमिषारण्य के अंदर बैठे हुए जो साधु हैं, उन्होंने पूछा हुआ पहला प्रश्न जो है उसका उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने पूछा था कि सारे शास्त्रों का सार क्या है, जितने भी शास्त्र दिए गए हैं उनका सार क्या है, और उनका जो सार है आप कृपा करके इस विश्व के पतित जीवों के लिए आप प्रस्तुत कीजिए, ताकि जनसामान्य यानी सामान्य जनता उसको बड़ी आसानी से स्वीकार कर सके। वेदों में दो प्रकार के धर्म मनुष्य के लिए बताए गए हैं, वो क्या है, एक है प्रवृत्ति मार्ग और एक है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ यह है कि वो इंद्रिय भोग का मार्ग है, और निवृत्ति मार्ग का अर्थ है ये विरक्ति का मार्ग है, निवृत्त होने का मार्ग है। और ये जो प्रवृत्ति मार्ग है वो कनिष्ठ माना गया है। और एक मिनट, सब लोगों को शांति रखना है, बहुत सारी आवाज आ रही है इसमें बीच में। जो पाथ, जो मार्ग, निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग है वो कनिष्ठ माना गया है, और जो त्याग का मार्ग है उसको वरिष्ठ माना गया है। भौतिक अस्तित्व जो जीवों का है वो एक रोगग्रस्त स्थिति है। हमारा जो भौतिक जीवन है उसको प्रभुपाद लिखते हैं कि ये रोगग्रस्त स्थिति है, और वास्तविक जीवन जो है वो ब्रह्मभूत अस्तित्व है, जिसको सत्य अस्तित्व कहा जाता है। उसका व्याख्या प्रभुपाद करते हैं कि ये ब्रह्मभूत अस्तित्व है। उसका अर्थ क्या है? ब्रह्मभूत अस्तित्व का अर्थ है कि वो चिरंतन है, ज्ञान पूर्ण है और आनंद पूर्ण है। भौतिक अस्तित्व जो है वो अशाश्वत है, मोहग्रस्त है और दुखों से भरा हुआ है। इसमें कोई आनंद है ही नहीं। ये सब दुखों का निवारण करने का एक व्यर्थ परिश्रम है, अ वेस्टफुल एफर्ट टू रिड्यूस द मिजरीज ऑफ लाइफ। इसमें कोई आनंद नहीं है। इसलिए भौतिक प्रगति के मार्ग में जो अशाश्वत है, दुख भरा है, मोह में भरा हुआ है, वो तुच्छ माना गया है। लेकिन भगवान के प्रति जो भक्ति का मार्ग बताया गया है, जो हमें शाश्वत आनंदमय और ज्ञान पूर्ण अस्तित्व की ओर लेके जाता है, उसे वरिष्ठ दर्जे का धर्म कहा गया है। उसे वरिष्ठ धर्म कहा गया है, श्रेष्ठ धर्म कहा गया है। उदाहरणार्थ, जब हम एडॉप्शन ऑफ डिवोशनल सर्विस फॉर मटीरियल गेन इज सर्टनली एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द प्रोग्रेसिव पाथ ऑफ रिनन्सिएशन, वैराग्य के मार्ग में इंद्रिय भोग की जो प्रवृत्ति है वो एक बाधा बन जाती है। वैराग्य ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मतलब किससे वैराग्य? भौतिक भोग की जो कामना है उससे वैराग्य जो है वो, ये बहुत ही श्रेष्ठ धर्म है मनुष्य के लिए, और ये रोगग्रस्त स्थिति में भोग लेने की जो प्रवृत्ति है, आनंद लेने की जो प्रवृत्ति है, उससे अनंत गुना श्रेष्ठ है। क्योंकि ऐसे भोग लेने की प्रवृत्ति केवल हमारे रोग के लक्षणों को बढ़ाती है, रोग को तीव्र करती है और रोगों के काल को भी बढ़ाती है। देखो, बहुत सुंदर बताया प्रभुपाद जी ने, सच एंजॉयमेंट एग्रेवेट्स द सिम्टम ऑफ द डिसीज एंड ऑल्सो इंक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ द डिसीज। यानी कि रोग की लंबाई और रोग के लक्षण और तीव्रता दोनों ही इंद्रिय भोग के द्वारा बढ़ जाता है। इसलिए भगवान की भक्ति जो है वो बहुत ही शुद्ध है, गुण में बहुत शुद्ध है, क्योंकि उसमें भौतिक भोग की कोई कामना नहीं है, नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति को ये जरूरी है कि इस प्रकार की भक्तिपूर्ण सेवा जीवन में अपनानी चाहिए, जिसमें बेमतलब की कोई इच्छाएं, कोई कर्मफल की आशा और कोई सैद्धांतिक जो कपोल कल्पनाएं हैं, फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, फ्रूटिव एक्शन यानी कर्मकांड या भौतिक इच्छाएं, इनको जगह नहीं देनी चाहिए। और ऐसे करने से हमें भगवान की सेवा में परम शांति का अनुभव होगा। वी हैव प्रपोज्ड डिनोटेड धर्मा एज ऑक्यूपेशन। प्रभुपाद कहते हैं कि मैं यहाँ पर धर्म की व्याख्या व्यवसाय इस तरह से कर रहा हूँ, ऑक्यूपेशन, क्योंकि हम जीवन में जो भी व्यवहार करते हैं वो हमारे जीवन को चलाने के लिए जरूरी होता है। हमारा जो जीवन है उसको चलाने के लिए व्यवसाय, कार्य करना, कर्म करना जरूरी है, और यही कर्म अगर हम भगवान के लिए करते हैं तो हम अस्तित्व को टिकाने में भी समर्थ हो जाते हैं और भगवान को प्रसन्न करने में भी समर्थ हो जाते हैं और सुख और शांति और आनंद प्राप्त करने में भी समर्थ हो जाते हैं। A living entity's sustenance of existence is to coordinate his activities with eternal relationship with Supreme Lord. हमारा जो अस्तित्व को टिकाए रखने का जो कार्य है ना, वो क्या है? भगवान के साथ हमारा जो रिश्ता है, उसी के साथ समन्वय करना, कोऑर्डिनेट करना, यही हमारे जीवन का व्यवसाय है। अगर हम हमारे जीवन में ऐसा कार्य करेंगे कि जिसमें हमारे भगवान के संबंधों के साथ समन्वय, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, तो हमारी सारी जो एक्टिविटी है वेस्ट है। भगवान हमारे पिता हैं, मैं भगवान का बेटा हूँ और या बेटी हूँ या अंश हूँ, और ये रिश्ता जो प्रेम का है, उसको बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी है वो करना, इससे ये समन्वय बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। कृष्णा इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ लिविंग बींग्स। जीवन के अस्तित्व का मूल श्री कृष्ण है और वो सर्व आकर्षक पुरुष हैं और वो चिरंतन है। सब जीवों में वो चिरंतन है। ईच एंड एवरी लिविंग बींग इज हैज इटर्नल फॉर्म इन द स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। हर एक जीव का भी भगवान की तरह एक रूप होता है, वो भी चिरंतन होता है। और भगवान परिपूर्ण है, परम पूर्ण पुरुषोत्तम है, ओम पूर्णमदः, और हम भी उनके पूर्ण और चिरंतन अंश हैं। द रिलेशन ऑफ वन ऑफ द सर्वेंट ई एंड द सर्वेंट, क्या हमारा रिश्ता है? एक सेव्य है और एक सेवक है, एक सेवा करने के योग्य हैं और एक सेवा करने वाले हैं, और ये दिव्य संबंध है। और ये हमारे भौतिक जीवन के संकल्पना से पूर्णतः भिन्न है। भौतिक दुनिया का जो संकल्पना है जीवन का, वो इंद्रिय भोग का है, जिसमें स्वयं हम केंद्र स्थान में होते हैं, और भक्तिपूर्ण जीवन में भगवान केंद्र स्थान में होते हैं, और हम सेवक भाव में होते हैं, सेवक क्रिया में होते हैं, और उस तरह से आनंद में रह सकते हैं। वन कैन रियलाइज इट एज डिवोशनल सर्विस प्रोग्रेसेस। ये हमें जैसे हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे, तो ये सत्य जो है ना, इसकी अनुभूति हमको होगी। क्या अनुभूति होगी? कि भगवान की सेवा करने में ही आत्मा के लिए जो आनंद अपेक्षित है, वो आनंद प्राप्त होता है। एवरीवन शुड एंगेज हिमसेल्फ इन ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू लॉर्ड। इसीलिए भौतिक दुनिया में हमारा अस्तित्व है, हम शरीर में रह रहे हैं, फिर भी हम सबको भगवान की सेवा में लगना चाहिए, प्रेममयी प्रेमपूर्ण सेवा में अपने आप को संलग्न करना चाहिए। दैट विल ग्रेजुअली गिव वन द क्लू ऑफ एक्चुअल लाइफ एंड प्लीज हिम टू कंप्लीट सेटिस्फेक्शन। इससे क्या होगा? हमारे जीवन का सार अर्थ हमें समझ में आएगा कि मेरे जीवन का अर्थ क्या है, मैं क्यों यहाँ पर हूँ, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ, मेरे लिए क्या जरूरी है, मैं जो सोच रहा हूँ वो मेरे लिए जरूरी है कि और कुछ मेरे लिए जरूरी है। इस सबकी अनुभूति कब होती है? जब जीव भगवान के प्रेममयी सेवा में अपने आप को संलग्न करता है, तो तुरंत ही उसको अपने जीवन के अस्तित्व के विषय में जानकारी होती है, जीवन के उद्देश्य के विषय में जानकारी होती है, जीवन में आनंद कैसे मिलने वाला है उसकी जानकारी होती है, अपने और भगवान के संबंध के विषय में जानकारी होती है। तो इस तरह से ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य यहाँ पर समाप्त होता है। दोबारा कहता हूँ, श्लोक क्रमांक 6, अध्याय क्रमांक 2 और भागवत का प्रथम स्कंध 1.2.6। अभी ये इतना सुंदर तात्पर्य है, आप लोगों को मेरी विनती है कि ये जो दूसरा अध्याय है ना, प्रथम स्कंध आएगा, प्रथम स्कंध का दूसरा जो अध्याय है, इसमें इतना सारा रहस्य भरा हुआ है, क्योंकि ये भगवान के चरण कमल हैं। श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान हैं, और प्रथम और द्वितीय स्कंद जो है वो भगवान के चरण कमल हैं। अभी व्यक्ति की सारी कृपा जो होती है ना, वो उनके चरणों से प्राप्त होती है, उनके सर से नहीं प्राप्त होती है। आप भगवान को सर पे नहीं स्पर्श करते हो, आप भगवान के चरणों को स्पर्श करते हो। जब हम पंडरपुर जाते हैं तो विठोबा को कहाँ स्पर्श करते हैं? चरणों में करते हैं। जब भी सुबह मैं मंगल आरती देखता हूँ तो भगवान को मैं स्क्रीन पर कहाँ स्पर्श करता हूँ? उनके फेटे पर स्पर्श नहीं करता हूँ, उनके चरणों में स्पर्श करता हूँ। गौरनताई के चरण भी दिखते हैं, उधर चरणों को स्पर्श करता हूँ। गोपाल जी के चरण दिखते हैं, वहाँ पर स्पर्श करता हूँ। क्योंकि कृपा जो है ना वो दिव्य व्यक्ति के चरणों में एकत्रित होती रहती है। मराठी में कहते हैं ना एक्वटली, एक्वटली मतलब वो कॉन्सेंट्रेट, वहां पर उसका संपृक्त प्रकटीकरण होता है और वहां से स्पर्श करने से पूरी कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए हमें हमेशा झुकना अच्छा रहता है। कठोर सीने से, तने हुए सीने से हम कृपा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। झुके हुए, मुड़े हुए छाती से और झुके हुए सर से हम कृपा को आकर्षित करते हैं। जैसे ही हम किसी के सामने झुक जाते हैं तो अपने आप जिसके सामने झुक जाते हैं उसके मन में करुणा और कृपा की भावना, आशीर्वाद की भावना अपने आप उत्पन्न हो जाती है। भले वो आशीर्वाद देने के योग्य हो या ना हो, लेकिन उसके मन में तुरंत एक सकारात्मक चेतना उत्पन्न हो जाती है। तो तात्पर्य ये कहने का ये सब कुछ ये है कि प्रथम स्कंद का जो द्वितीय अध्याय है उसके अंदर लाइन से ऐसे श्लोक दिए गए हैं, आपको उसको पढ़कर इतना आनंद आएगा। जितनी भी बार आज तक मैंने पढ़ा हुआ है उसके अंदर इतना सागर भरा हुआ आनंद का, क्योंकि वो श्रीमद् भागवत की जो भूमिका है उसको प्रतिष्ठापित करता है। इट्स द इंस्टॉलेशन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम का सार जो है वो सब इसमें फाउंडेशन, एक प्रतिष्ठापना के रूप में हमको दिया गया है। और ये सब हमें कैसे पता चल रहा है? अगर मैं पढ़ूंगा, हाँ क्या लिखा है, सभय पुंसाम परो धर्मे यतो बक्षि रदो सजे हय तो कि अप्रतिहता ययात्मा सुप्रित सुप्रसिद्धति, इतना पढ़ने से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं ना संस्कृत पढ़ा हूँ पर ना मैं भगवान का भाई भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ, पूरा भक्त बना भी नहीं हूँ। तो श्रीमद् भागवत है ना एक आनंद का गहरा सागर है। इसकी शुरुआत शरणागति से होती है ऐसे प्रभुपाद बताते हैं। कल ही मैंने सुबह वाले प्रवचन में सुना था, यस्टरडे मॉर्निंग, कि श्रीमद् भागवत ये शरणागति से आरंभ होता है। भगवद गीता शरणागति में समाप्त होती है और श्रीमद् भागवत की शुरुआत शरणागति से होती है और उसकी परिणति, उसका जो अंतिम स्थिति है वो प्रेम में उसका रूपांतर हो जाता है। और श्री चैतन्य चरितामृत जो है वो प्रेम से शुरुआत होता है और प्रेम जिनको प्राप्त हुआ है ऐसे लोगों का आदान प्रदान, जीवन, चर्चा, व्यवसाय कैसे होता है, ये सब चैतन्य चरितामृत है। यानी चैतन्य चरितामृत केवल प्रेम और प्रेम और प्रेम और प्रेममयी लोगों का डिस्कशन है। तो श्रीमद् भागवत हमें प्रेम की ओर ले जाने वाला शास्त्र है। और इसमें नैमिषारण्य के जो 88,000 साधु हैं, संत हैं, वो प्रश्न पूछ रहे हैं। किनको पूछ रहे हैं प्रश्न? देखिए, सूत गोस्वामी को पूछ रहे हैं, क्योंकि ये द्वितीय भागवत प्रसंग है। प्रथम भागवत प्रसंग जो है वो सुखदेव जी और परीक्षित महाराज के बीच में चल रहा है और वो सभा में सूत गोस्वामी थे और सूत गोस्वामी उस सभा में थे, इसलिए उनको नैमिषारण्य की सभा में अध्यक्ष के रूप में व्यासपीठ के ऊपर बिठाया गया है। और अभी उनकी योग्यता क्या है, क्योंकि उन्हें सुखदेव जी के मुख से पूरे 7 दिन 7 रात भागवत सुना है, इसलिए वो योग्य वक्ता हैं, उनको वक्ता के रूप में बिठाया गया है। और उनको अभी 88,000 लोगों ने क्या प्रश्न किया है, देखो क्या प्रश्न किया है कि आप सारे जो प्रकट शास्त्र हैं उनका सार बताइए, हाँ, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ना वो उसको बताइए। उसके उत्तर में क्या कहा उन्होंने, बहुत सुंदर बात कही उन्होंने, कहा कि अगर हमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, हाँ, अगर हम मनुष्य के रूप में आए हैं तो उसका एक ही काम है, सवय पुंसा परो धर्मी यदो बक्षी अधोक्षजे, यथो यथो बक्षी यथो भक्तिर अधोक्षजे, सवय पुंसाम परो धर्मी। परम धर्म क्या है उस जीव का जो मनुष्य के रूप में आया है, उसको अधोक्षज यानी जो इंद्रियों के द्वारा जाने नहीं जा सकते उनको अधोक्षज कहा गया है, वो है विष्णु यानी परम भगवान श्री कृष्ण। उनकी भक्ति करना ही, उनके विषय में जीवन को अपने आप को समर्पित करना, उनके लिए अखंड और बिना किसी हेतु के, बिना किसी फल के सेवा करना, ये ही उसका सार है। अगर एक वाक्य में पूरा सार कहा जाए तो यह है, बिना बाधा के, बिना खंड के, प्रेममयी सेवा, हाँ, और बिना किसी उद्देश्य के, कि ये करने से मुझे प्रमोशन होगी, ये करने से मुझे सुंदर पत्नी और सुंदर पति प्राप्त होंगे, अच्छे पुत्र पुत्रियाँ प्राप्त होंगी, अच्छी धन संपत्ति प्राप्त होंगी, अच्छे कर्म फल पुण्य फल इकट्ठा होंगे, ये सब जो है छोड़कर, यानी अप्रतिहता मतलब बिना खंड के, और अहेतुकी मतलब बिना किसी हेतु के, ऐसी सेवा जो प्रेम से भरी हो वो किसके लिए करनी है? भगवान के लिए करनी है। बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। सबसे पहले जानना है कि ये मेरा जीवन का उद्देश्य है, दूसरे बाद में सेवा करनी है, उस सेवा में प्रेम को डालना है, उस प्रेममयी सेवा को करते समय कोई हेतु वेतु उसके अंदर होगा, कर्म फल की लालसा होगी, उसको छोड़ देना है और खंड खंड में नहीं करना है, अप्रतिहता करना है, उसे बिना अवरोध के करना है, कंटिन्यूअसली करना है, कीर्तनीय सदा हरि। और ये बहुत बड़ा उद्देश्य है, जीवन भर प्रयास करना पड़ेगा इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस उद्देश्य को सफल करने के लिए। अभी हम लोग कर रहे हैं लेकिन वो अप्रतिहता है, अप्रतिहता नहीं है। सुबह कर लिया, फिर दोपहर में कहीं और झगड़ा कर लिया, फिर और कुछ भोग की लालसा कर ली, फिर शाम को कोई पानी पूरी खाने की इच्छा हो गई, फिर रात को थोड़ा सा भगवान का ध्यान किया, फिर सो गए, फिर सुबह 2 घंटा उसमें भी सो रहे हैं, तो बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी प्रतिहता है उसके अंदर, बहुत सारा खंड है उसके अंदर। तो भगवान को क्या चाहिए? अप्रतिहता। अच्छा, बीच में कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अरे जब कर रहा हूँ तो जरा प्रमोशन भी होना चाहिए, प्रगति भी होनी चाहिए, क्या अभी इतना छोटा घर है, जरा बड़ा घर भी होना चाहिए, इतना मैं पाप छोड़ दिया, सब कुछ करना छोड़ दिया भगवान के लिए, इतना मैं कर रहा हूँ, अरे चाय कॉफी तक छोड़ दिया मैंने, सुना तुमने, मैंने चाय कॉफी तक छोड़ दिया, लहसुन प्याज भी छोड़ दिया है, इतना कठिन कठिन वस्तु मैंने छोड़ दिया है। उसके बदले में एक तो घर तो होना ही चाहिए, और भैया भगवान मैं तो बड़ा घर चाहता किस लिए हूँ, आपका ही बड़ा मंदिर बनाऊंगा, आपके ही लिए सत्संग कराऊंगा, सब आपके लिए भगवान, एक घर तो दे दो बड़ा। तो ये भी कामना रखते हुए करेंगे तो भी वो भगवान को ना यही आत्मा सुप्रसिद्धति, ना अपने आत्मा को ना भगवान की, भगवान के लिए संतुष्टि देगा। भक्ति जो है ना वो निरपेक्ष होती है, और जितनी निरपेक्ष होती है उतनी भगवान अपनी सारी छुपी छुपी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। जितनी हम उस उन अपेक्षाओं को आगे आगे करते हैं ना, उतना हम भगवान को प्रसन्न करना भूल जाते हैं, मतलब प्रसन्न नहीं कर सकते। देखो कैसा है बालक, हमारी आप सबको बालक हुए हैं, कोई बुजुर्ग हैं, कोई नए नए गृहस्थी हैं, सबको नन्हे नन्हे बालक जन्म हुए थे। क्या वो कोई 9 to 5 जॉब करते थे क्या? कोई ऑफिस में जाके काम करते थे क्या? अपने दूध के लिए, अपने लालन पालन लंगोटी के लिए क्या किया उन्होंने? माता को केवल अपने आप को माता के गोद में पूर्णतः 100% समर्पित कर दिया, और उसके वजह से माता ने उनके लिए सब कुछ दे दिया जो उनकी इच्छा थी, और जो उनको पता भी नहीं था कि उनकी ज़रूरत है, उन सारे न जानते हुए ज़रूरतों को पूरा कर दिया, और भूख लगी तो दूध भी दे दिया और कपड़े भी धो दिए, सब कुछ कर दिया। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि माता को, माता बालक की ऐसी ऐसी चीज़ों को पूरी करती है जो बालक को भी पता नहीं होता है कि मुझे ज़रूरत है इसकी, द चाइल्ड डजंट नो, लेकिन ऐसी इच्छाओं को भी पूर्ण किया जाता है। और बालक जो रो रो के मांगता है दूध दो, या पॉटी किया तो रो रहा है कि निकाल दो इसको, गंदा तकलीफ हो रही है, तो जो जानता है नहीं जानता है, सारी इच्छाओं को भगवान माँ पूरी कर देते हैं। उसी प्रकार से जब हम निरपेक्ष होकर भगवान की भक्ति करते हैं तो जो जो मन में हमारे छुपा छुपी हुई इच्छाएं हैं, जिनको हमने सोच समझ कर दबा दिया है, ए भाई इसको नहीं बोलना है भगवान को, ओ भाई इसको जरा बाजू में रखना है, इसको बिना सोच के भगवान की भक्ति करनी है, उन इच्छाओं को भी भगवान पूरी कर देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज मांगने गए थे ना, ऐसा राज्य दो, अढ़ल राज्य दो, अटल राज्य दो, इससे मुझे कोई हटा नहीं सकेगा, लेकिन जब भगवान दिखे तो बोलता है नहीं चाहिए मुझे, हाँ कांच कांच की तरह है सब, ये टूटे हुए कांच के टुकड़े जैसा है, मुझे ना आप जैसा हीरा प्राप्त हुआ है, अभी मुझे टूटे हुए कांचों की टुकड़ों की इच्छा नहीं है। तो भगवान क्या कहते हैं, अरे भैया ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम बड़े निरपेक्ष बने हो, लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूँगा, ताकि आगे दुनिया नहीं ये समझे नहीं कि इच्छा पूर्ण करने में भगवान समर्थ नहीं है। इसलिए अभी तुम जब ये फल को प्राप्त करोगे जिस पर तुम्हारी इच्छा नहीं है, तो तो तुम उस फल का उपयोग अच्छी तरह से कर सकोगे। जब तुम्हारी इच्छा होती है और वो फल प्राप्त होता है तो उसके भोग में तुम लिप्त हो जाते हो, लेकिन जब उस फल को प्राप्त करते हो और उसमें आपकी कोई इच्छा नहीं है तो उसको आप दिव्य तरीके से, आनंदमय तरीके से उसका उपयोग कर सकते हो। जैसे हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं माधवानंद प्रभु, हाँ, उनको डायरेक्टर बनने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी और महाराज ने कहा कि नहीं आपको बनना है, तो बोला क्या होगा इससे, मैं आध्यात्मिक प्रगति कर पाऊंगा क्या? बोला हाँ, ये पद प्राप्त करोगे तुम आध्यात्मिक प्रगति कर पाओगे। हाँ तो आठवीं ठीक है। तो जब निरपेक्ष भावना से इस सर्वोच्च पद पर वो बैठे तो उसका सर्वोच्च उपयोग भगवान की सेवा में हो रहा है। उनको आनंद तो है लेकिन जनता के परम कल्याण के लिए इसका कार्यक्रम हो रहा है। अगर उस पद के लिए उनकी बहुत अभिलाषा होती, आकांक्षा होती, एम्बिशन होता तो वो उसी में रमे रहते। हाँ, जैसे हमारे आजकल के पॉलिटिशियन रमे रहते हैं अपने आनंद में, क्योंकि उनको इतना अच्छा लगता है मंत्री पद और संतरी पद कि जिससे वो उसका पद का लाभ उठाने में, पद का भोग लेने में, पद के अधिकार का लाभ उठाने में इतना व्यस्त रहते हैं कि जन कल्याण और भगवत सेवा भूल जाते हैं। तो जैसे ही हम किसी वस्तु के प्रति निरपेक्ष हो जाते हैं और फिर भगवान उस वस्तु को हमें दे देते हैं तो वो वस्तु का सही उपयोग हम कर सकते हैं। एनीवे, ये तात्पर्य प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर लिखा है। इसमें सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कहे गए, सूत गोस्वामी जो बता रहे हैं और सूत गोस्वामी को जो प्रथम प्रश्न पूछा गया है उसके उत्तर में जो उत्तर ये श्लोक के माध्यम से सूत गोस्वामी ने दिया है उसको प्रभुपाद जी ने तीन पैराग्राफ में, तीन परिच्छेद में उसका बहुत सुंदर विवरण दिया है। और आप जानते हैं ना कि ये विवरण उन्होंने कहाँ लिखा था, ये विवरण उन्होंने राधा दामोदर मंदिर में लिखा था। हो सकता है 1963 के साल में, हाँ उस समय ही मेरा जन्म हुआ था उस साल में, तब मैं माता के गर्भ में था, तब प्रभुपाद जी वहाँ पर राधा दामोदर मंदिर में अपने उम्र के 69वें साल में, सॉरी 65वें साल में शायद, क्योंकि 3 साल पहले तो वहाँ पर थे ना वो, अपना घरदार, अपना परिवार, अपना व्यवसाय, अपने जीवन की बाकी सब चीज़ें छोड़कर अपने गुरु के आदेश के अनुसार वो मथुरा आए थे और केशव गौड़िया मठ में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। उसके बाद में वो वृंदावन आए थे और राधा बंशी गोपाल मंदिर में उन्होंने 5 रुपया पर महीना किराए पर पहले मंजिल पर एक कमरा किराए पर लिया था जहाँ से जमुना जी का दर्शन होता था। आज वो मेरे ब्रिजवासी मित्र का किराए पे लिया हुआ कमरा है, तो मैंने उसके अंदर जाके भी दर्शन किया। वहाँ पर एक कमरे में प्रभुपाद जी रहते थे और उन्होंने भगवद गीता का वहाँ पर अनुवाद किया था। उसके बाद निर्मल चंद्र गोस्वामी राधा दामोदर के उनके पिताजी, उन्होंने उनको आमंत्रण दिया था इसलिए वो राधा दामोदर मंदिर में शिफ्ट हो गए थे 2 कमरों में, एक किचन का कमरा, एक लिखाई पढ़े का कमरा। और विशेष बात आप ध्यान रखिए, हम सब लोग दर्शन करते हैं, दंडवत करते हैं वहाँ जाके। कभी आपने देखा है, सोचा है क्या कि उस कमरे में टॉयलेट कहाँ है? दोनों कमरे में टॉयलेट नहीं है। आगे जानकारी करने पर पता चला कि टॉयलेट तो बहुत दूर था, कमरे के बाहर आकर लेफ्ट टर्न लेकर मेन दरवाजे से बाहर जाकर फिर लेफ्ट टर्न लेंगे तो वहाँ पर पैर धोने की एक जगह है, वहाँ पर टॉयलेट है। तो ऐसा नहीं था कि 2 बेडरूम अटैच टॉयलेट, ऐसी व्यवस्था नहीं थी उनके पास। मतलब बहुत ही सिंपल सी व्यवस्था थी, बहुत ही सादगी भरे कमरे थे उसके अंदर। और उन सादगी भरे कमरे मतलब क्या, कोई इंद्रिय भोग की गुंजाइश नहीं वहाँ पर, कोई पॉश वस्तु नहीं है। और दूसरा क्या है, उस कमरे का ऐश्वर्य क्या है कि उस वो कमरा जो है वो रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी का जो प्रचार केंद्र था राधा दामोदर मंदिर, उसके अंदर था वो। और उसकी और विशेषता क्या है कि उस जगह पर विश्व में जो प्रचार करना था उसका डिस्कशन, चर्चा उस जगह पर अनंत बार हुआ है। रूप गोस्वामी के समाधि और रूप गोस्वामी के भजन कुटी के बीच में जो जगह है ना, उन जगह पे ये सारे गोस्वामी आते थे। रूप गोस्वामी ने वहीं पर भजन किया है क्योंकि उस समय राधा गोविंद जी का मंदिर बन रहा था, तो कंस्ट्रक्शन साइट में छोड़कर वो अपने भतीजे के कमरे में मंदिर में आकर रहते थे। और वहीं पर उनका देहांत हुआ तो वहीं पर उनकी समाधि बनाई गई, तो भी उसके सामने है। तो रूप गोस्वामी जब थे तब उनके भजन कुटी के सामने एक तमाल का पेड़ था, उस पर बैठकर प्रभुपाद जी उसके बैठ वहाँ पर बैठकर एक कोने में पैर धोकर, वहाँ पर एक वैष्णव पाद प्रक्षालन स्थली है, एक गड्ढा है, उसके अंदर वो पैर धोते थे और रूप गोस्वामी के समाधि के सॉरी रूप गोस्वामी के भजन कुटी के सामने सब लोग एकत्र होते थे। छह गोस्वामी, फिर सातवें आठवें भूगर्भ और लोकनाथ गोस्वामी, फिर जूनियर श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और बाकी सारे ब्रज के जितने भी गृहस्थ गृहस्थ सन्यासी आते थे, जो प्रचार में अग्रेसर थे, वो सब लोग वहाँ पर विश्व की रक्षा करने के लिए कैसे प्रचार किया जाए उसमें बहुत गहरा चिंतन वहाँ करते थे। उसी जगह पर प्रभुपाद जी ने बैठकर पूरी इस्कॉन की संकल्पना की। देखिए कितना अच्छा कर्म धर्म संयोग है। वहीं पर चिंतन करके श्रील प्रभुपाद जी ने विश्व में कैसा प्रचार किया जाए इसकी योजना बनाई। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि राधा दामोदर मंदिर के जो दो कमरे हैं प्रभुपाद जी के, वो इस्कॉन का गर्भाशय है। इस्कॉन एक गर्भ, हाँ, गर्भ गर्भ शिशु के रूप में वहाँ पर प्रवेश किया उसने और डिलीवरी हो गई उधर 26 सेकेंड एवेन्यू, उधर वो डिलीवरी हो गई इस्कॉन की। उधर नवजात शिशु के रूप में प्रभुपाद जी ने उनको जन्म दिया। तो वो जगह जो है राधा दामोदर की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें प्रभुपाद जी ने पूरे दिन अखंड चिंतन किया है जीवों के कल्याण के लिए। अखंड चिंतन कैसे, उसका प्रूफ क्या है? मैं उन सब गोस्वामियों को जानता हूं, जब निर्मल चंद्र गोस्वामी थे, अभी तो गुजर गए वो बुजुर्ग होकर, अभी उनके पुत्र हैं कनिका प्रसाद गोस्वामी, वो भी हमारे अच्छे मित्र हैं। पिछली यात्रा में हमने यहाँ पर महाराज जी के साथ प्रसाद पाया था, सबको जानता हूं। उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी, कनिका प्रसाद जी कह रहे हैं, मेरे पिताजी प्रभुपाद जी के बहुत बड़े, मतलब क्या कहते हैं उसको, फैन थे। फैन यानी चाहते थे, चाहने वाले थे। तो प्रभुपाद जी को उन्होंने पूरी दादा दामोदर के महाप्रसाद की व्यवस्था की थी उनके भोजन के लिए। तो उनके कमरे के बाहर वो महाप्रसाद का थाली रखते थे और प्रभुपाद जी का कमरा बंद हुआ करता था, क्योंकि वो एकांत में ग्रंथ लेखन, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का अनुवाद और तात्पर्य लिखने में व्यस्त रहा करते थे। और उस थाली को कब देखते थे? शाम को, संध्या के समय, जब उनका लेखन का कार्य उस दिन के लिए समाप्त होता था और वो प्रभु राधा दामोदर के दो समाधियों के और भजन कुटी के बीच में जो जगह जाए उनको साफ करने के लिए बाहर निकलते थे, तब वो थाली का दर्शन करते थे, उसको उठाकर अंदर रखते थे। फिर प्रभु रूप गोस्वामी की समाधि और भजन कुटी के बीच में जो जगह है जहाँ पर गोस्वामी लोग बैठा करते थे, उस जगह को झाड़ू लेकर, आंखों में आंसू लेकर उसकी बुहारी करते थे। उसके बाद में वो रात का भोजन, जो दोपहर का भोजन हुआ करता था, वो रात को पाते थे। इसका अर्थ ये हुआ कि सुबह का भजन करने के बाद में रात तक प्रभुपाद जी अपने कमरे में बंद रहा करते थे और इतने मग्न होकर, ये तात्पर्य जो आज हमने पढ़ा है उसको भी लिखा है, और प्रथम स्कंद में जितने अध्याय है वो पूरे अध्याय, वो सभी कितने अध्याय हैं देखिए, प्रथम स्कंद में इधर तो 19 अध्याय दिए हैं सुखदेव जी के जन्म तक। ये सारे अध्यायों पर उन्होंने तीन खंड के रूप में तात्पर्य लिखे अनुवाद के साथ अंग्रेजी में, और वो इतने मग्न रहा करते थे कि उनको भूख प्यास नींद का कोई परिणाम उन पर होता नहीं था। आदमी भूख और प्यास के और निद्रा के परे तब जा सकता है जब वो कोई आत्मस्तर का दिव्य आनंद का अनुभव करता हो, या कोई ऐसी सेवा करता हो जो उसके जीवन में सर्वस्व है। जैसे हमारे रामशरण प्रभु के बेटे का अभी विवाह हुआ है ना कुछ दिन पहले, तो विवाह के पहले के पूरे दिन क्या चिंतन था? दिन और रात बस सीता स्वयंवर एक ही विषय था, है ना, और कोई विषय नहीं। प्यास में, भूख में, नींद में एक ही विचार, स्वप्न में, जागृति में एक ही विचार। तो ऐसी कोई श्रेष्ठ सेवा हो जो महत्वपूर्ण हो, उसमें कोई लगा होगा जो अपने दिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो आदमी नींद और प्यास और भूख भूल सकता है। या तो वो ऐसी आत्म स्तर पर सर्वोच्च सेवा करता होगा, जीवन की सर्वोच्च सेवा, तो वो सब तन मन भान उसका खत्म हो सकता है। तो प्रभुपाद जी ने ये तात्पर्य दो कारण से लिखे हैं, एक है उनके गुरु की आज्ञा और दूसरा है हम जैसे जीवों का कल्याण, और दोनों उनके मन में इतने प्रधान मात्रा में थे कि वो ऐसे तन मन धन खोकर इसको सेवा कर रहे थे कि अपने पूरे होशो आवास को वो खो गए थे, उन्होंने खो दिया था। उसको तुरिया अवस्था कहते हैं, हमारे भारतीय महाराष्ट्रियन आध्यात्मिक भाषा में तुरिया अवस्था कहते हैं, मतलब जो त्रिगुणातीत है, जो तीन गुणों के परे हैं, जिस तीन गुणों के परे स्थिति में, दिव्य स्थिति में, ट्रांसेंडेंटल पोजिशन में, कोई शरीर के वेगों का त्रास नहीं होता है। और त्रास नहीं होना केवल यह स्थिति नहीं होती है, त्रास नहीं होने के साथ आनंद का, परमानंद का अनुभव होते रहता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि दीज परपोर्ट्स आर माय स्पिरिचुअल एक्सटसीज, ये मेरे आध्यात्मिक परम आनंद की प्रचीति है और प्रकटीकरण है। दीज परपोर्ट्स आर मैनिफेस्टेशन ऑफ माय स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल एक्सटसी। तो इसलिए मैंने कहा कि जब हम निरपेक्ष भावना से भगवान की सेवा करते हैं तो दिव्य आनंद की अनुभूति अपने आप होती है, आप चाहेंगे या नहीं चाहेंगे फिर भी आपको मिल जाती है। प्रभुपाद ने ऐसे कहा नहीं, कहा कृष्ण भगवान भक्ति सिद्धांत जी महाराज, अब मैं इस ग्रंथों का आपकी आज्ञा के अनुसार अनुवाद करने जा रहा हूं, कम से कम मुझे इतना तो गारंटी दीजिए कि मुझे आनंद प्राप्त होगा इसके अंदर, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। करते गए करते गए करते गए आनंद की प्राप्ति होती गई होती गई होती गई, अरे अलग अलग से आनंद की ये जो है ना अभिलाषा करनी नहीं पड़ती है भक्ति में, इसलिए भक्त जो है भक्ति के आनंद की अभिलाषा से भी मुक्त रहता है, क्योंकि भक्ति प्रेममयी भक्ति करते समय आनंद का तो सागर उमड़ पड़ता है, आनंद के सागर में डूब जाते हैं सब लोग जो करने वाले होते हैं, उनके चेहरे पर वो आनंद झलकता है। तो आज का तात्पर्य और आगे आने वाले 19 अध्यायों के सारे श्लोकों का अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद जी ने राधा दामोदर मंदिर में बैठकर किया है, और सारे भौतिक उपलब्धियों को त्याग कर वो वहां पर आए थे। लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन का वो एक कल्बिनेशन था, अपने गुरु की आज्ञा और भगवान की सेवा का जो जीवन का महत उद्देश्य था उसको करने के लिए जो उन्होंने पूरे जीवन भर प्रयास किया था उसका वो एक अंतिम स्थिति थी, निर्णायक स्थिति थी, फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड फुल्ली फोकस्ड। और ये प्रथम स्कंद का प्रथम खंड जब हुआ, बेचारे दिल्ली गए, धूप में तड़पते रहे, बेहोश होकर गिरे, उधार में छपवा के उसको रोड पे खड़े होकर बेचा, थोड़ा बहुत धन इकट्ठा हुआ तो उसके पेमेंट किया, और दूसरा खंड लिखने के लिए फिर दामोदर मंदिर आए, फिर मग्नता में उसको लिखा, फिर दूसरा खंड तैयार हो गया, फिर दिल्ली गए, फिर उधार में उसको छपवाने का प्रयास किया, फिर छपवाया और वो सारी किताबें हाथ में लेकर खड़े होकर बेचने लगे, जिसको जिसको बेचा उस पर पैसे बनाए, उसमें तीसरे खंड का उधार में छापने के लिए काम दिया। ऐसे जिसके पास कोई धन नहीं, कोई साधन नहीं, कोई अनुयायी नहीं, कोई स्पॉन्सर नहीं, कोई धनी अनुयायी नहीं उनके पीछे, कोई सपोर्ट नहीं, ऐसे अकेले प्रभुपाद जी ने कितने समर्पण के साथ में ये प्रथम स्कंद के तीन खंड तैयार किए, और वो लेकर वो अमेरिका गए। अभी हम लोग जाते हैं ना अमेरिका, जब मैं जाता हूँ तो दो बैग भरे रहते हैं, 23 किलो 23 किलो 46 किलो, अभी तो कम हो गया, 46 किलो में खाने पीने की कपड़े, इसमें सॉक्स मोजा और क्या क्या चीज़ें भरी रहती है। प्रभुपाद जी का पास क्या था, एक छतरी, एक 40 किलो का बोरी आलू का, और ये ढेर सारी किताबें, कॉपी ऑफ श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो, एक ही था कैंटो उनके पास, वो पूरा बोट भर के वो लेके गए और वहाँ पर उतारे और कहीं रखे थे घोड़ा उनके अंदर, और उसी तो उन्होंने क्या लिखा है, देखो और एक महत्वपूर्ण बताना जरूरी है, उन्होंने कहा था कि मुझे जो भी कुछ कहना था, जो भी मुझे बद्ध जीवों के लिए संदेश देना था, जीवन के कल्याण के लिए, जीवन के उद्धार के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी मुझे कहना था वो मैंने प्रथम स्कंद के तीन खंड के तात्पर्यों में लिख दिया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा आशा नहीं है कि मैं बहुत लंबे समय तक जी पाऊँगा, और पूरे अनुवाद करते करते फिर धीरे धीरे अपने संदेश को दूंगा। इसलिए मैंने जो भी कुछ कहा कहना है मुझे, वो इन तीन खंडों के प्रथम स्कंद के तात्पर्यों में मैंने कह दिया। इसका मतलब क्या होता है? प्रथम स्कंद अगर इस्कॉन के भक्तों ने पढ़ लिया, तो प्रभुपाद जी को जो भी कुछ उनके हृदय में सार रूप में कहना था, जैसे यहाँ पर सूत गोस्वामी कह रहे हैं, वो सार रूप में जो भी कुछ कहना था वो प्रथम स्कंद में उन्होंने लिख दिया है। और वो स्कंद कहाँ लिखा? राधा दामोदर मंदिर में। और वो किसके लिए लिखा? हमारे और आपके लिए। उसके आगे के जो स्कंद लिखे वो उन्होंने अपनी यात्रा में लिखे, जहाँ जहाँ जा रहे हैं, मंदिर स्थापन कर रहे हैं, दिन दिन भर मंदिर स्थापन करने का योजना बना रहे हैं, भक्तों को बना रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, उनके साथ में लेक्चर दे रहे हैं, मूर्तियों को स्थापन कर रहे हैं, भक्तों के खतों को लेटर को आंसर दे रहे हैं। उस समय तो पोस्ट किया करते थे ना, स्पीड पोस्ट वगैरह रजिस्टर पोस्ट करते थे, तो दिन भर तो लगे रहते थे, अकेले व्यक्ति थे, कोई उनके गुरु भाई, कोई संस्था, गौड़ीय मठ उनके साथ में नहीं था। तो सुबह 4 बजे से लेकर तैयारी होकर, मंगला से लेकर, जपा से लेकर, भागवतम क्लास से लेकर, ये सारे कार्य करते 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 रात तक वो कार्य करते थे, बिल्कुल 1 मिनट की फुर्सत नहीं करती होती थी। और उनको पता था कि मैं तो आज हूँ, कल नहीं रहूँगा, लेकिन क्या रहेगा वो मेरी किताबें रहेंगी, मैं चला जाऊँगा, एक दिन काल के प्रभाव से मेरा जीवन समाप्त होगा, तो मुझे जो भी कुछ करना है वो सब मुझे लिखना है, तो मुझे वो कब लिखूँ मैं? तो एक ही उत्तर मन में आया, नींद को त्याग कर रात को लिखा करो। तो नींद को त्याग किया और रात को लिखना आरंभ किया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम अन्न त्याग कर सकते हैं, जल त्याग कर सकते हैं, हाँ, धन त्याग कर सकते हैं, स्त्री को त्याग कर सकते हैं, लेकिन नींद नहीं त्याग कर सकते, ध्यान रखना इस बात। नींद बहुत प्रेशियस चीज होती है। एक तरह से हम पति और पत्नी को भी छोड़ सकते हैं, हाँ, धन की लालसा भी छोड़ सकते हैं, प्रमोशन की लालसा भी छोड़ सकते हैं, लेकिन नींद नहीं छोड़ सकते। नींद चाहिए, 1-2 दिन तो ठीक है भाई, बेटी की शादी है तो ठीक है, नींद छोड़ सकते हैं, एग्जाम है तो छोड़ सकते हैं, 1-2 दिन छोड़े, लेकिन 2-3 दिन के ऊपर नहीं छोड़ सकते। 7वें दिन अगर नहीं नींद सोएंगे तो हम मर जाएंगे, ये हमारी स्थिति है। तो प्रभुपाद जी ने एक दो घंटा नींद निकाल कर इतनी 14 बार विश्व का भ्रमण करते हुए 12 साल में कितना जेटलैग होने की संभावना थी, जेटलैग को परास्त करके प्रभुपाद जी ने जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ हर रात को 11 बजे से लेकर 3, 3:30 बजे तक, 4 बजे तक लेखन किया। जब दुनिया खर्राटे भरती थी तब प्रभुपाद जी टक 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 करके लिखते थे, डिक्टाफोन पर बोलते थे और अनुवाद करते थे। कितना बड़ा त्याग किस लिए किया है? कि हम और आप जीवन का उद्धार कर सके। ये ग्रंथ जो है ना, ये प्रभुपाद जी का हृदय है। यहाँ पर प्रभुपाद जी नहीं, प्रभुपाद जी का हृदय आपके लिए उपलब्ध है। यू आर डायरेक्टली एंटरिंग द हार्ट ऑफ प्रभुपाद। कि प्रभुपाद के दिव्य मधुर हृदय में कौन सा अमृत छुपा हुआ है, उसमें आप प्रवेश कर रहे हो जब आप प्रभुपाद जी की किताब पढ़ रहे हो। और प्रभुपाद जानते थे कि मैं तो समय के प्रभाव से जाऊंगा, लेकिन 10,000 साल तक, जब तक क्या कहते हैं उसको, गोल्डन पीरियड ऑफ स्वर्ण काल कलयुग का रहेगा, तब तक ये मेरा हृदय का अमृत सब जीवों के लिए उपलब्ध होगा। और अमृत है, इसका प्रूफ क्या है? अरे बड़े बड़े लोगों ने प्रवचन दिए, हाँ, पिछली सदी में, ये सदी में, और वाह वाह तालियां ग्रहण कर ली लोगों की, हाँ, अप्लॉज प्राप्त कर लिया। कितने लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ, कितने लोग पाप छोड़कर पुण्य कार्य में और भगवत कार्य में लगे, हार्डली एनीबडी। पर प्रभुपाद जी जब थे तभी भी, और प्रभुपाद जी जब चले गए उसके बाद भी, इन ग्रंथों को पढ़कर लाखों लोगों ने जीवन परिवर्तन कर दिया है, सकारात्मक दृष्टि से भगवत सेवा में जीवन को परिवर्तित किया है, पापों को छोड़ दिया है। ये उन किताबों की शक्ति है। और उन्होंने कहा था कि मैं जब जाऊंगा तो मेरी मुलाकात आपकी मेरे किताबों में होगी। प्रभुपाद जी के शिष्यों ने भी उसका अनुभव किया है। प्रभुपाद जब गए तो सब टूट चुके थे, उध्वस्त हो चुके थे, जीवन उनका निरर्थक हो चुका था, लेकिन उनकी प्रभुपाद की वाणी उनको याद आई कि मैं तुम्हें मेरे किताबों में मिलूंगा। तो जब किताब पढ़ना शुरू किया तो प्रभुपाद जी का अस्तित्व का अनुभव किया, हाँ, शरीर से नहीं किया लेकिन आत्मा के स्तर पर प्रभुपाद जी का दिव्य सत्संग का अनुभव उन्होंने किया। तो हम ना बड़े बोझ, ऋण के बोझ के नीचे हैं। आप समझ लेना इस बात को। ये ऋण, ऋण क्या है कि हमारे लिए प्रभुपाद ने लिखा है। ये सब कुछ जो है ना, ये एक एक तात्पर्य की एक एक लाइन जो है ना, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए निजी स्वरूप में इंडिविजुअली ये लिखी गई है। ऐसा नहीं कि भारत वर्ष के लिए, अमेरिका वर्ष के लिए, ऐसा नहीं है। हर एक जीव के व्यक्तिगत कल्याण के लिए, हाँ, मेरे लिए, तेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए लिखा गया ये। तो ये हमारा परम भाग्य है। और इसके द्वारा मेरी अनुभूति क्या है कि मुझे आध्यात्मिक जीवन का जो सार है वो सहज शब्दों में बहुत सरलता से समझ में आया, केवल प्रभुपाद की किताब पढ़ने से। मैं तो वैसे, मेरा नाम विवेकानंद है, आप पढ़ रहे हैं मेरे नाम पे, तो मेरे स्वामी विवेकानंद पे बहुत मेरी श्रद्धा थी बचपन से। एक गर्व था कि मेरा नाम ही विवेकानंद है। तो मैंने स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ने का बहुत प्रयास किया, और जितना पढ़ा उतना और कन्फ्यूज़ होता गया मैं। समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाहते हैं। फाइनली बड़े महान विभूति थे, ऐसा नहीं कि मैं उनका अनादर कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं समझना चाहता था वो बार बार पढ़ने पर भी समझ नहीं पाया। और जब मैं प्रभुपाद जी की किताबों से मेरा परिचय हुआ तो सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आई। तो एक बद्ध जीव के बद्ध मेंदू में, बद्ध बुद्धि में ये सार कैसे पहुँचाना है, ये रहस्य इन तात्पर्यों में छुपा हुआ है। पाप कर्म करने से जो जड़ बुद्धि बन गई है, उस जड़ बुद्धि को भी समझ में आएगा, और वो जो समझ में आया वो कार्यान्वित होगा। ऐसी कला और शक्ति इन प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में हम प्राप्त करते हैं। इसलिए इस न चुकाने वाले ऋण को अगर चुकाना है तो एक ही कार्य है, एक ही कार्य है, एक ही कार्य है, इन किताबों को वितरित करना, इन किताबों को दूसरों को देना। प्रभुपाद जी का ऋण हम कभी चुका नहीं सकते हैं, कोई नहीं चुका सकता है, लेकिन उनको प्रसन्न जरूर कर सकते हैं। क्योंकि जब हम जिसने हम पर बहुत उपकार किया है और उसका उपहार इतना बड़ा है कि हम इस जीवन में अंत तक उसको फेड़ नहीं सकते, उसको अदा नहीं कर सकते हैं, तो एक ही कर सकते हैं, उसको प्रसन्न कर सकते हैं, जिसमें उसको खुशी है वो कार्य कर सकते हैं, वो ही कार्य करते रह सकते हैं जिसमें उनको निरंतर खुशी मिलती रहे। भाई हम तो इतने गरीब हैं, इतने लाचार हैं कि हम आपको क्या प्रसन्न या क्या ऋण चुकाएंगे आपका। तो हम आपको प्रसन्न करने में कुछ करें तो वो कहेगा भाई बेटा ये करो तो मुझे आनंद आएगा। तो उन्होंने कहा है कि इफ़ यू वॉन्ट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, अगर मुझे आपको प्रसन्न करना है तो मेरे किताबों को बेचो। तो हमारे मन में अगर ये सही ऋणी भावना है कि इन्हीं किताबों के वजह से मेरा जीवन का उद्धार हुआ है, इन्हीं किताबों के माध्यम से मुझे आध्यात्मिक अनुभूतियां प्राप्त हुई हैं, अगर हमारे मन में ये वास्तव में ऐसा विचार है, तो हमें ये न किन प्रकारे इन किताबों को वितरण करने का उपाय करना चाहिए। हमारे में से बहुत डॉक्टर्स हैं, बहुत नर्सेस हैं, बहुत हाईली एजुकेटेड लोग हैं, कोई बुजुर्ग हैं, कोई हाउसवाइफ है, तो आप बोलेंगे हम तो डॉक्टर हैं, बहुत बिजी रहते हैं, कैसे करेंगे उसको। जहां बैठे कोई डेंटिस्ट है समझो, कोई सर्जन है, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन है, कोई इंटेंसिविस्ट है, कोई फिजिशियन है, कोई चर्म रोग तज्ञ है, कोई प्लास्टिक सर्जन है, कोई नर्स है आईसीयू की, सब लोग व्यस्त रहते हैं। लेकिन जहां जहां आप बैठे हैं, आप लोग इतने प्रभावशाली है कि आपकी बुद्धि को इस्तेमाल करके वहां वहां आप प्रभुपाद की किताबों का वितरण कर सकते हैं। क्योंकि आप आत्मा मतलब शरीर की सेवा कर रहे हैं, जब लोग बहुत भयंकर अवस्था में होते हैं उनको बचा रहे हैं आप, तो सहजता से ही लोग डॉक्टरों के ऋणी हो जाते हैं कि भाई आपने फीस जरूर लिया लेकिन आपने हमारी जान बचाई। साहब फीस क्या होती है, पैसा आ जाए कल नहीं, जिंदगी आपने बचाई है, ये पैसे चुकाकर हम आपके ऋण को अदा नहीं कर सकते हैं। ऐसी भावना अपने आप मरीजों के अंदर पैदा होती है। उस समय आप कहो कि अगर आप सच में ऐसा सोचते हो, ये लो, ये प्रभुपाद जी की गीता पढ़ो, ये प्रभुपाद जी का आत्म साक्षात्कार का विज्ञान ये किताब पढ़ो, ये आप भागवतम ले लो, ये छोटी छोटी किताबें पढ़ो, अपने जीवन को सुधारो। अगर आपको सही में लगता है कि मेरा इलाज ठीक था और मैंने आपको ठीक किया, तो आप मांस खाना छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, सिगरेट पीना छोड़ दो, और भगवान की सेवा में लगो, भगवान का नाम जप करो। ये सब रहस्य इन ग्रंथों में दिया है, इसको पढ़ो। ये ग्रंथ जो है ये टाइम बॉम्ब है, ये स्वयं श्री कृष्ण है, ये आपके घर में निवास करेंगे, आपके घर से जो अशुभ चीज़ें सबको भगा देंगे, जो भी अशुभ है, जो भी अकल्याणकारी है, जो भी सर्वनाशक है, जो भी पाप है, ये सब ये किताबें आपके घर में केवल होने से नष्ट कर देंगी। और जब है घर पे, केवल रह रहे हैं, तो आप उसको पढ़ो और उनमें जो लिखा है उसको जीवन में उतारो। आपके मरीज, आपके संपर्क में आने वाले, हाँ, जिनको हम काउंसलिंग करते हैं, जिनको हम स्पिरिचुअल केयर देते हैं, वो सब लोग आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ कोई देता नहीं है। वैद्यकीय इलाज भी लोग पैसे के लिए करते हैं। मनी इज़ द ओनली टर्निंग बिजनेस, वही उसका उद्देश्य होता है। उसके साथ साथ में कोई आत्मकल्याण की बातें नहीं करता है। और प्रभुपाद जी कहते भी थे कि अगर आपको सिद्धांत इतना अच्छा पता नहीं है, आपको इतना अगर नॉलेज नहीं है, आप इतना अच्छा प्रचार नहीं कर सकते हो, कुछ मत करो, मेरी किताब पकड़ा दो बस, खाली उनको, मैं ही करूँगा प्रचार, जो मैं ग्रंथ के रूप में मैं निवास कर रहा हूँ ना, ग्रंथों में मेरे, मैं ही निकलूँगा बाहर और आपका सारा कार्य कर दूंगा। चमत्कार दिखाई पड़ेगा आपको, जो आप नहीं कर पाए, जो आपके वचन नहीं कर पाए, जो आपका प्रयास नहीं कर पाया, वो ये मेरी किताबें करेंगे। बस केवल युक्ति से उनको ये किताबें पकड़ा दो और केवल किताब बेचा और पैसा इकट्ठा किया खुशी में मत रहो, उनको पढ़ने को प्रवृत्त करो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ हमारे स्टाफ को कि इतने भागवतम दिए, इतने चैतन्य चरितामृत दिए, इतनी गीता दिए, आज इसने लिया, उसने लिया, इस पर केवल आनंद मत करो, उनको पढ़ने के लिए प्रवृत्त करो। उनको बोलो, प्रभु जी आप ये 180 रुपये खर्च कर रहे हो, 2500 रुपये खर्च कर रहे हो, 5000 रुपये खर्च कर रहे हो भागवतम के लिए, इसको पढ़ो। केवल खरीदने से कल्याण नहीं होता है, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन परम कल्याण होना है तो इनको पढ़ो। इसलिए अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारी पुरानी हॉस्पिटल के एक स्टाफ है, प्राची माता जी, उनका जो छोटा सा बालक है ना, उसका नाम है प्रद्युम्न, वो भगवत गीता वितरण कर रहा है। मुझे माता जी ने बताया मैसेज के ऊपर, इतना छोटा सा बालक है, केवल 6-7 साल का होगा, वो अपने छोटे छोटे तोतले तोतले नन्हे नन्हे निष्पाप बोल बोल रहा है और लोगों को भगवत गीता दे रहा है। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि हम लोग नहीं दे सकते? हाउ वी कैन से वी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट? समय नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप जहाँ पर अस्तित्व आपका है वहीं से आप दे सकते हो, जहाँ बैठे हैं वहाँ पर दिमाग लगा कर दे सकते हो, थप्पी लगा कर बैठो अपने टेबल पे और आते लोगों को प्रवृत्त करो उसको लेने में। जो जो बालक है वो अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी युक्ति के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार उसको दे रहा है। आप भी अपने स्थिति के अनुसार, अपनी अस्तित्व के, जहाँ पर अपना अस्तित्व है, अपनी बुद्धि के अनुसार आप किताब दे दो। बालक को छोटी सी बुद्धि है, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके लोगों को ग्रंथ दे रहा है। हमारी बुद्धि बड़ी है, प्रगल्भ है, मैच्योर्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, तो हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करके जहाँ जहाँ हम बैठे हैं, हाँ, श्री यमुना देवी माता जी की मम्मी कहेगी कि मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, लेकिन उनके अंदर बहुत ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा है, वो बुढ़ापे की अवस्था में भी किताब वितरण कर सकते हैं। सबसे बड़ी कमी किसकी होती है पता है? इच्छा की कमी होती है। सबसे बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है पता है? आलस्य होता है। द मोस्ट बिगेस्ट डिस्क्वालिफिकेशन इज लेजीनेस एंड मोस्ट थिंग विच इज नॉट देयर इज डिजायर। तो इच्छा हो और आलस्य को हम ठुकरा दें तो आपके हाथ से भगवान चमत्कार करेंगे। वास्तविक रूप में मेरा तो ऐसा अनुभव रहा है कि जिनको प्रभुपाद को किताब देनी है उन तक प्रभुपाद अपने माध्यम से किताब पहुंचा देते हैं। हम खाली उनका निमित्त बन रहे हैं, प्रभुपाद जी का पोस्टमैन बन रहे हैं। और जिनको जिनको प्रभुपाद को किताब देना है वो प्रभुपाद बराबर उनको पहुंचाएंगे। आप नहीं देंगे तो और किसी के हाथ से पहुंचाएंगे। लेकिन क्यों ना हम पहुंचाएं? निमित्त मात्रम भव सव्य साची, ऐसा क्यों अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं? अरे मैंने सबको मार दिया है भैया, सबका वध कर चुका हूं मैं, देखो सब मर चुके हैं, लेकिन तुम धनुष उठाओ और तुम निमित्त बनो, तुम उसके श्रेय के भागीदार बनो। और श्रेय के भागीदार बनने का मतलब क्या है? आत्मकल्याण, तुम्हारा कल्याण होगा तुम अगर इस कार्य में अपना सहभाग दोगे। करने वाला तो तुम नहीं हो, करता तो मैं हूं। तो ये मार्गशीर्ष का महीना है, भगवान ने गीता इस महीने में कही थी। पूरे विश्व में कोई संस्था नहीं ऐसी जिसमें एक किसी महीने में, साल में, दुनिया भर में सब इस्कॉन के भक्त लोग पुस्तक वितरण करते हैं। ऐसे कोई संस्था में कोई नियम नहीं है, कोई संस्था नहीं ऐसी जिसमें पुस्तक वितरण का ऐसा कोई नियम होगा। जितनी किताबें इस्कॉन ने आज तक वितरित की है वैसे कोई संस्था ने नहीं की है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने ये विशेष, क्या कहते हैं उसको, प्रोजेक्ट, अभियान चलाया है। पुस्तक वितरण दिसंबर मैराथन। तो आइए सब मिलकर बड़े उत्साह के साथ, थोड़े अपने कंफर्ट को त्याग करके, हाँ थोड़े भोग को त्याग करके बाहर निकलें और जीवन के ऊपर कल्याण करते हुए उनको ये किताब वितरण करें। मेरा भी उद्धार, एक मित्र ने मुझे साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान अंग्रेजी में दिया था, उसके वजह से मेरा उद्धार हुआ था। मैं उसको किताब को शुरू किया तब 4 माला जप कर रहा था, 3-4 महीने में किताब को समाप्त किया तो मैं 16 माला जप कर रहा था। ये ऐसा परिवर्तन मुझ जैसे पत्थर अहंकारी व्यक्ति के अंदर मैंने खुद अनुभव किया है। तो आप जान सकते हैं कितनी शक्ति है इन किताबों में, क्यों किसी भी स्वार्थ के लिए इन किताबों को लिखा नहीं गया है, पैसे के लिए नहीं लिखा गया है, केवल आत्म उद्धार के लिए, जीव कल्याण के लिए उसको लिखा गया है। इसलिए आइए सब लोग बड़े उत्साह के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़े समर्पण के साथ, अपनी तन मन हाँ प्राणे वाचा धिया बुद्धि सबको इस्तेमाल करते हुए प्रभुपाद जी को प्रसन्न करें। हाँ ययात्मा सुप्रसिद्धति, ययात्मा यह मेरी आत्मा और यह प्रभुपाद आत्मा सुप्रसिद्धति, यह कृष्ण आत्मा परमात्मा सुप्रसिद्धति, इसको हम संपन्न करें। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न होगा किसी को तो थोड़ा दर्शन देकर प्रश्न करो तो अच्छा रहेगा, दर्शन भी होगा, प्रश्न भी होगा, उत्तर भी होंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, दोनों ने दो व्यक्ति ने हाथ ऊपर किया है तो मैं भी उनको पहले अनम्यूट करता हूँ। एक मिनट ना जरा, तो मैंने उनको ब्लॉक करके रखा है, रुको जरा। हाँ अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। हाँ कौन बोलते है? सच्ची प्राण प्रभु बोल रहे हैं, बोलो बोलो प्रभु जी।
बहुत सुंदर एकदम, बहुत ही सुंदर लेक्चरियन क्लास है आज का, हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशनल क्लास है। और ये सब सॉरी प्रभु जी, हम लोग वीडियो में आप करना पड़ेगा कि मैं उनको पालघर जाना है।
कोई बात नहीं, आप कपड़े पहनते पहनते प्रश्न पूछो, कोई बात नहीं।
प्रभु जी प्रश्न ऐसा है कि समय पूछता मनोधर्म भक्ति रहते हैं और जो प्रैक्टिस करने के लिए गृहस्थ के जीवन में अहेतुकी और अप्रतिहता कैसे प्रैक्टिस करेंगे? गृहस्थ तो अपने
गृहेता को बनने ताको सदा हरी बोले डाको, सुखे दुखे भूले ना को बदने हरी नाम करो रे। गृहस्थों के लिए हरी नाम लेना है और भगवान को कहना है मुझे इच्छा तो बहुत है, जरूरतें भी बहुत है, लेकिन भगवान मैं आपको समर्पित करता हूँ। मानस देहो गे हो, क्या कहते हैं उसको, मानस देहो गे हो जो कि चुमोर अर्पिलुन दीवा पदे नंद किशोर। तो गृहस्थ ये तो कह सकता है ना, भगवान जो भी कुछ है, जो भी इच्छाएं हैं वो सब आपकी है भगवान। आप अब मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल बात, आप ना ऐसा आप तो कर ही रहे हो, आप खाली मुझे लोगों के लिए पूछ रहे हो, मेरे लिए पूछ रहे हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि आप ऐसे मानस देहो गे हो जो किचु मोर, ऐसा आप जर अर्पण करते रहेंगे ना तो आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी जरूरतें हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम, सब भगवान पूरा कर देंगे। ये जो श्लोक है ना योगक्षेमम वहाम्यहम, ये केवल सन्यासियों के लिए नहीं है, ये सब उन जीवों के लिए है, सब वर्ण के, सब आश्रम के, उन सब जीवों के लिए है जिन्होंने अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित किया है। प्राणे अर्थे वाचा धिये, ये जो हम भगवान को अर्पण करेंगे ना तो हमारी ज़रूरतें सब पूरी हो जाएंगी प्रभु जी। भगवान के लिए क्या एक टिचकी मारेंगे ना तो सारा हमारा कल्याण हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है प्रभु जी इतना चिंता करने की। अभी देखो रिटायर होने का समय आया, अभी क्या है कुछ है ही नहीं, लेकिन एक ही हमारी शक्ति है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। हाँ उनके लिए अपना जीवन देंगे तो अपने लोग को मेंटेन नहीं करेंगे क्या? अरे कुत्ता बिल्ले को मेंटेन कर रहे हैं, वो गुनहगारों को आतंकवादियों को मेंटेन कर रहे हैं, भक्तों को मेंटेन नहीं करेंगे क्या? डोंट वरी, जस्ट ऑफर योर सेल्फ। हाँ मानस देहो गेहो जो किचू मोर, जो भी मेरा है वो सब आपका है भगवान। फिर भगवान देखो क्या चमत्कार करते हैं, अरे उनको चमत्कार करने का मौका तो दो कम से कम। ही इज वेटिंग टू डू चमत्कार इन लाइफ, और हमारे जीवन में कर चुके हैं, आपके जीवन में करेंगे, सबके जीवन में करेंगे, चमत्कार करना तो उनका हॉबी है। हम उनको मौका देंगे तो चमत्कार करते रहेंगे वो। ठीक है प्रभु जी, सचिवराम प्रभु आप तो खुद ही एक चमत्कार हो, आपका खुद का जीवन ही एक चमत्कार है, आप चिंता क्यों करते हो। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, आई हैव ग्रेट डिजायर टू डिस्ट्रीब्यूट प्रभुपाद बुक्स, बट प्रभु जी हियर आई एम नो एसोसिएशन ऑफ गर्ल्स डिवोटीज और माता जी, सो प्रभु जी काइंडली एनलाइटन मी, व्हाट शुड आई डू। देखो जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं ना कि भक्ति को करने में कोई बाधा नहीं होती, देर इज नो मटीरियल ऑब्स्ट्रक्शन इन परफॉर्मिंग प्योर डिवोशनल सर्विस। तो आपको जो लगता है ना आपकी बाधा है, वो एक्चुअली बाधा है ही नहीं। आप खाली प्रार्थना करो, प्रभुपाद मुझे ऐसी शक्ति दो, बुद्धि दो, हाँ, कि मैं आपकी किताब वितरण कर सकूं। लोगों ने भी ऑनलाइन बुक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खोला हुआ है, अरे बैठे बैठे खाली कंप्यूटर घुमा रहे हैं और किताब बेच रहे हैं, वो तो बताओ आप। नई नई तरीका है, डिजिटल एज है प्रभु, माता जी डिजिटल एज है, कंप्यूटर का एज है, जूम का एज है, यूट्यूब का एज है, फेसबुक का एज है, बैठे बैठे बिस्तर पे बैठे भी आप किताब वितरण कर सकते हो। बस इच्छा रखना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, इच्छा होने के बाद प्रभुपाद जी आप पर कृपा करेंगे। आपको ना मैं एक मंत्र बताता हूँ, प्रभुपाद के पास जाना और बोलना, प्रभुपाद जी मुझे आप ऐसा बुद्धि देना कि मैं आपके किताब वितरित कर सकूं। आई वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट योर बुक्स, प्लीज गिव मी आइडिया, प्लीज गिव मी इंटेलिजेंस। तो आपको जीवन में भी चमत्कार होते दिखाई पड़ेगा आपको, डोंट वरी। कोई भी भौतिक बाधा आपके सेवा के बीच में नहीं आ सकती। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है? राम शरण प्रभु, श्री राधे, आपका क्या विचार है बताइए।
ये चमत्कार के बारे में बहुत सही कहा आपने, कि अभी मैं अभी अभी देख चुका हूँ 9 दिसंबर को।
हमने भी इसका अनुभव किया है चमत्कार का। ऐसा है ना? हाँ बोलो बोलो। यस,
बहुत कठिन होता है एक पिता के लिए, और फिर भी सब भक्तों की कृपा से, वैष्णवों की गाइडेंस से और सपोर्ट से बहुत ही सुंदर हुआ, और इसमें मैं भगवान करिश्मा ही देख सकता हूँ।
जिन्होंने चमत्कार का अनुभव किया है वही चमत्कार के विषय से बोल सकते हैं, जैसे आप और मैं, इन दोनों ने ये चमत्कार का अनुभव किया है, तब हम समझ चुके हैं कि हम कितने अणु मात्र हैं और भगवान कितने विभु हैं, और हम क्या सोचते हैं और भगवान क्या कर सकते हैं। हमारा काम एक ही है बस,
मतलब प्रेम ही है।
हाँ,
और क्या, चमत्कार यानी वो प्रेम ही है।
बिल्कुल, प्रेम से ही चमत्कार होता है, और चमत्कार केवल प्रेम का ही होता है, बाकी चमत्कार सब बेकार होते हैं। जो चमत्कार से आत्मकल्याण नहीं होता है वो चमत्कार भी बेकार है। तो भगवान चमत्कार प्रेम से करते हैं नंबर वन, और भगवान जो चमत्कार करते हैं वो आत्मकल्याण के लिए होता है, वो हमको और भगवान के पास लेके जाता है। ऑल द पर्पज ऑफ चमत्कार सेंट बाय कृष्णा इज टू सिंपली ब्रिंग यू क्लोजर टू हिम, मोर क्लोजर टू हिम। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। और कोई प्रश्न है किसी को? ठीक है,
जी।
कौन बोलते है?
आया।
हाँ एक मिनट, कुठे है तुम्ही? हाँ बोला बोला माता जी, बोला।
प्रभु जी, जेव्हा आपण बुक डिस्ट्रीब्यूशन करतो ना, तर लोक आध्यात्मिक साठी खर्च करायला मागत नाही, त्यांना फ्री मध्ये पाहिजे असतं। हाँ,
त्यांना सांगायचं, अबे हिंदी में बोलता हूँ, हिंदी में आपका उत्तर का उत्तर हिंदी में देता हूँ उनको, बोला अरे एक्स वाई जेड ए बी सी, ऐसा गाली बीच में बोल सकते हैं आप, लेकिन मैं बोलना बोलना अरे एक मोबाइल खत्म होता है ना आपका, तो आप 15,000 खर्च करते हो, 10,000 खर्च करते हो, गरीब से गरीब आदमी भी 8,000 खर्च करता है, 5,000 खर्च करता है, अरे मेरे घर पे भी है। हाँ, और एक कुछ क्या बोलते हैं उसको, टॉपअप खत्म हो गया तो तुरंत 400 रुपये खर्च करते हो यूट्यूब देखने के लिए, और आप कहते हो कि पैसे नहीं है और फुकट में चाहिए। अरे जेब में से भी पैसे गिर जाते हैं बड़ा पाव खाने के समय, तो भी आप चिंता नहीं करते हो, एक भगवान के लिए आप चिंता करते हो। अपने लिए मार्केट जाओगे तो कितना हजारों खर्च करके आ जाते हो, 1-2 हज़ार का वाउचर इनकैश करने के लिए गए थे और 10,000 खर्च करके आते हो, ये मेरा उदाहरण बता रहा हूँ मैं। तो 100 रुपये की 200 रुपये की किताब लेंगे तो आपका क्या बिगड़ने वाला है, इतनी कंजूसी क्यों करते हो, खुद के लिए इतने उदार रहते हो, भगवान के लिए इतने कंजूस रहते हो। अपने भगवान ने आपको हवा दिया है, पानी दिया है, फ्री में दिया आपके लिए, ऐसा बोल सकते हो? जो दिल में आया वो बकवा उस समय जरूर असर करेगा उसके ऊपर। दिल से बोलो और बोलो कि कोई चीज़ फ्री भी नहीं मांगनी चाहिए गृहस्थ को। शर्म की बात है, गृहस्थ तो कमाता है, पत्नी को घर पे रखता है, बच्चों को रखता है, इंद्रिय मुख्य साधन रखता है, उनको कोई चीज़ फ्री में लेनी नहीं चाहिए। और ये तो भगवद गीता है, सारों से सबसे मूल्य चीज़ है। और बोलना भैया ये भगवद गीता की कॉस्ट नहीं है, केवल पेपर और बाइंडिंग की कॉस्ट है, अंदर का नॉलेज फ्री है आपके लिए, आपको फ्री चाहिए ना, दे रहा हूँ मैं फ्री में, खाली पेपर की कॉस्ट दे दो, ऐसा बोलो। हरे कृष्णा। और अभी एकदम फ्रेश उदाहरण है रामशरण प्रभु के बेटे की शादी का, तो उनको बोलना अरे शादी में तो कितने पैसे खर्च करते हैं हम, हाँ भोजन पे, डेकोरेशन पे और फोटोग्राफी पे और साड़ी पे, हाँ और 200 रुपये किताब लेने में इतना तड़पते हो, बोलो उनको, पूछो उनको कितना अपना शादी में खर्च किया आपने, शादी किया ना आपने, बोलो कितना खर्च किया, 200 रुपये किताब के लिए रोते हो, ले लो भगवान की, भगवान का संदेश ले लो। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी का? कौन बोलते हैं?
कल्पना माता जी।
हाँ यस माता जी बोलो।
आई जस्ट वांटेड टू ऐड टू व्हाट यू सेड अबाउट बुक डिस्ट्रीब्यूशन।
यस
आल्सो वन प्रभु जी आस्क्ड हाउ कैन आई डू बुक डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज़ ही डजंट हैव एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज।
हां हां वन माता जी आस्क्ड।
हाँ अच्छा, सो आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट सिंस इट्स द लॉकडाउन पीरियड एंड वी आर ऑल एट होम, सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव सेंट आई मेड अ स्मॉल थिंग एंड सेंट इट टू ऑल माय कॉन्टैक्ट्स ऑन व्हाट्सएप रिगार्डिंग भगवद गीता, एंड देन इफ समबडी हैज यू नो देन इफ समबडी थिंक्स दैट दे वांटेड फ्री आई टेल देम इफ यू कांट अफोर्ड इट आई विल स्पॉन्सर।
Okay.
So what happens?
शर्म आती है उनको।
हाँ शर्म आती है कि I can't afford 120 rupees or 150 rupees to buy the book, and so I have got a lot of orders and I have given it to them.
How do you deliver the books then? In one case, suppose if one person says I want one copy, how will you deliver one copy?
By courier.
You courier it?
I'm giving them the address and the name of the person and the address, and they are sending it from the party temple.
Oh, one book also?
One book also they are sending.
Wow, अरे कितने अच्छी बात है ये, very beautiful.
Of course, there are some charges for that. If you want by courier, it is little expensive, and if it is by this book post, then it's 40-50 rupees. हो जाता है।
तो वो खर्चा कौन करता है?
प्रभु जी, I have taken that all those my orders on credit.
हाँ।
And if the person whom I'm giving the book to, if he's prepared to pay the charges, it's fine. Otherwise, I'm bearing the charges.
Oh, okay, 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 okay. But at least the book is reaching in their house. You are bearing the cost.
Yeah.
Very good. Very good.
We can't do it physically. I thought this is a
yeah. Very nice, Mother. Very grateful to you. Prabhupada will be very pleased with you. No doubt about it. Thank you for your wonderful contribution. Hare Krishna. और कोई प्रश्न है किसी का? Yes, anybody? So.
हरे कृष्णा प्रभु जी दर्शन प्रणाम।
कौन बोलते हैं?
मैं प्रेरणा।
हाँ तुम्ही कुठे आहात? एक मिनट जरा बघतो। प्रेरणा कुठे आहे? हाँ प्रेरणा कुठे आहे? ओके ओके ठीक आहे बोला बोला बोला। यस माताजी बोला बोला।
खूप इन्स्पायरिंग लेक्चर होतं, खूपच इन्स्पायरिंग होतं प्रभूजी। मला फक्त एक शेअर करायचं, आता सध्या लॉकडाऊन पिरियडमुळे आपण रोडवरती जाऊन भगवद्गीता काय डिस्ट्रीब्यूट करू शकत नाहीये। मी सुद्धा एक वर्किंग डॉक्टर आहे आणि मला जेव्हा माझ्या सिनियर्सनी इन्स्पायर केलं बुक डिस्ट्रीब्युशनसाठी, सो आय वॉज थिंकिंग की लॉकडाऊनमध्ये आपण कसं करू शकतो। तर मी माझे जे कॉन्टॅक्ट्स होते व्हॉट्सअपचे त्यांना मेसेज केला, अँड यू विल नॉट बिलीव, वन ऑफ देम, वन ऑफ माय पेशंट वॉज अ बंगाली he was a devotee and he posted it in their in Bengal. He posted it in his group.
Wow.
Devotee group. You will not believe the results are outstanding. I am able to distribute 51 Bhagavatam set.
Wow.
Chaitanya Charitam and 7 box of Bhagavad Gita.
Are baap re. हरे कृष्णा, सब लोग बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अमेजिंग।
एक्चुअली आई डोंट वांटेड टू शेयर इट बिकॉज़
नहीं, यू मस्ट शेयर। ना 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 ना
एज यू वेर इंस्पायरिंग टू एवरीवन आई थॉट दैट आई शुड गिव एन आईडिया टू ऑल द डॉक्टर्स
हां
बिकॉज़ सो मेनी पेशेंट्स we have a good number of WhatsApp contact list which we can
so Mataji I want to repeat again 51 Bhagavatam sets and 2 boxes of big books and
51 Bhagavatam sets 40 near about 35 Chaitanya Charitamrita
oh.
6 boxes of Bhagavad Gita
Hari Bol Jai Ho I bow down to your lotus feet Mataji I bow down to your feet and take your blessings that I should at least distribute 1 Bhagavatam set
Thank you so much, Prabhuji. So, just it's an idea that we can use this
media, yes, yes.
Social media as an instrument.
Adaji, I fully agree with you. In the zamana of WhatsApp and Facebook, best utilization of Facebook and WhatsApp. Or.
तुमको ते वाक्य खूब आवडले की आपण फक्त इंस्ट्रूमेंट रूपादांना ज्यांना बुक द्यायचं असतं भगवद्गीता द्यायची असते आपण फक्त त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचं
हां खरी गोष्ट आहे खरी गोष्ट आहे निश्चित थैंक यू माता जी थैंक यू वेरी मच आई रियली ग्रेटफुल टू यू और किसी का प्रश्न कोई है एनीबडी एल्स ओके ओके सो मैं अभी मेरा प्रवचन यहाँ पर समाप्त करता हूँ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है और मैं आपका ऋणी हूँ और फिर मिलेंगे जब भगवान की इच्छा होगी जय जय श्री राधे श्याम वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः
थैंक यू सो मच प्रभुजी थैंक यू सो मच
जय 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 श्री राधे श्याम
बंद करने का वैसे पिछले का वायर ये पहले बंद करके आया ऐसे जो बंद करना है ना उसके बाद में भी बंद कर दो सब किसी के वायर शॉर्ट हो सकते हैं